الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم تسہیل بہشتی زیور میں سے کتاب السلوک والاحسان اب پڑھ رہے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا اور آج اس سلسلے کی دوسری کلاس ہے. کتاب السلوک والاحسان کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتایا تھا کہ سلوک اور احسان کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے یہ. تو کوئی آپ سے اگر بتا سکے کہ سلوک سے کیا مراد ہے اور احسان سے کیا مراد ہے. جی، سلوک کس چیز کو کہتے ہیں، کیا کانسیپٹ ہے، تو بتا سکے گا؟ سلوک کا کیا مطلب ہے؟ سلوک انہوں نے جواب دیا ڈائریکٹ میسج میں، تو دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے. تو سلوک جس راستے پہ چلا جاتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں. ٹھیک، سلوک راستے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سالک راستے پر چلنے والے کو کہتے ہیں، اور سالکہ راستے پر چلنے والی کو کہتے ہیں، سالک اور سالکہ. اور یہ راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، صراط مستقیم اس کے لیے دوسرا نام ہے جو قرآن مجید میں بالکل سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسی راستے کے لیے، اسی کانسیپٹ کے لیے صراط مستقیم کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا سوال کلاس لیکچر شروع کرنے سے پہلے، کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج پہلے ذکر کیا، اور اخلاق حمیدہ اور ان کو پیدا کرنے کے طریقے یہ بعد میں ذکر کیے. ٹھیک ہے، تو ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اخلاق ذمیمہ کا علاج پہلے اور پھر اخلاق حمیدہ یہ سب بعد میں، تو ایسی ترتیب کیوں رکھی؟ حالانکہ منفی چیز جو ہے وہ پہلے تو نہیں آنی چاہیے، پہلے تو مثبت چیز آنی چاہیے. بھائی اخلاق حمیدہ پیدا کر لو، ٹھیک ہے نا، جب اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں گے تو اخلاق ذمیمہ جو ہے وہ چھپ جائیں گے. تو پہلے اخلاق حمیدہ کے بارے میں بتاتے، ان کو پیدا کرنے کا طریقہ بتاتے، تو پہلے انہوں نے منفی چیز کا ذکر کیوں کیا؟ جی، ایک ہی دل ہے، پہلے گندگی نکالی جاتی ہے پھر اچھائی کی جگہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہ ایک ہی دل ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس دو دل نہیں ہے کہ ایک دل کو جو ہے وہ گندا چھوڑ دو اور دوسرے دل کے اندر اچھائی بھر دو. ایک ہی دل ہے نا، ایک ہی پیالہ ہے، دل بمانے پیالہ، پیالہ کے تو اسی ایک پیالے کے اندر ہی اچھائی اور اسی ایک پیالے کے اندر برائی. تو پہلے برائی کو نکالیں گے تب اچھائی کی جگہ بنے گی. اور دوسری بھی ایک وجہ بتائی تھی آپ کو، وہ اگر کوئی کوئی اور بتا دے. انہوں نے دونوں سوالوں کے جواب دے دیے، ایک ہی اسٹوڈنٹ نے دونوں سوالوں کے جواب دیے. تو دوسری وجہ یہ بتائی تھی، جی آپ نے جواب دیا کہ دفع مضرت پہلے اور جلب منفعت بعد میں. ہمارے دین میں یہ ترتیب ہے، پہلے جو نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہیں ان کو دور کرنا یہ پہلے ہے، اور پھر اس کے بعد نفع پہنچانے والی چیزوں کو حاصل کرنا یہ بعد میں ہے. इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है इस्तेलाह, वो दफ़े मुज़र्रत, मुज़र मुज़र चीजें, उनको दफा करना, ठीक है ना, दफा दूर करना कहते हैं ना उर्दू में, तो ये पहले है। और जल्ब, जल्ब कहते हैं किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना ना, मनफात, मनफात कहते हैं नफा पहुंचाने वाली चीज, तो जल्ब मनफात उसके बाद है, ठीक है। जैसे कलमे तैयबा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, अल्लाह का नाम तो पहले आना चाहिए था, अल्लाहु अकबर, कलमे तैयबा के अंदर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु वाहिद नहीं, अल्लाहु वाहिदुन, ये कलमे तैयबा नहीं है, ठीक है ना, कि अल्लाह तो एक है, ये कलमे तैयबा नहीं है, बल्कि कलमे तैयबा है ला इलाहा, कोई नहीं है माबूद, फिर उसके बाद है इल्लल्लाह, ठीक है। हमारे दीन का मिजाज दफ़ाए मुज़र्रत पहले, उसके बाद जल्बे मनफात है, ठीक है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीम उल उम्मत, उन्होंने इसी तरतीब का ख्याल रखा। तो फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया था कि जी नबी अलैहि सलाम की हदीस मुबारका से शुरू किया था कि इन अल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखते और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे कुलूब को देखते हैं और तुम्हारे आमाल को देखते हैं, ठीक है। तशरीह हो गई थी पिछली क्लास में, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, अगला पेज 135, उसमें एक और हदीस मुबारक नकल करी कि अन नुमान इब्ने बशीरन मरफूअन फी हदीस की तवीलन, कि हजरत नुमान इब्ने बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये मरफूअन रिवायत है, यानी मरफूअन का मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने सुना, ठीक है, और आगे बयान किया कि अला, गौर से सुन लो, कान खोल कर सुन लो, अला व इन्ना फिल जसदे मुगा, बेशक जिस्म के अंदर एक एक टुकड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है, मुगा मुगा कहते हैं एक पीस, ठीक है, इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहू, जब वो सही हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है, सलुह सलुहा का मतलब उसका उसकी इस्लाह हो जाती है, ठीक है ना, जब उसकी इस्लाह हो जाती है ना, सलुहल जसदु कुल्लुहू, तो पूरे जिस्म की इस्लाह हो जाती है, व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहू, और अगर वो फसाद याफ्ता हो जाए, ठीक है, तो पूरा जिस्म फसाद याफ्ता हो जाता है, अला वही अल कल्ब, कान खोल कर सुन लो कि ये कल्ब है, ठीक है ना, ये तुम्हारा दिल है, रूहानी दिल, रूहानी कल्ब, ठीक है, तुम्हारे रूह का जो मरकज है उसको कल्ब कहते हैं, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होता है तो तमाम बदन दुरुस्त होता है, और जब वो फासिद हो जाता है तो तमाम बदन फासिद और खराब हो जाता है, और आगाह रहो कि वो टुकड़ा दिल है, ठीक है। तो फिजिकली भी अगर आप देखें तो दिल जो है ना वो उससे जो है वो पूरी बॉडी की जो है वो ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है, तो अगर दिल खराब हो जाए तो फिर जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड आपका पहुंच रहा होता है ना वो गलत पहुंच रहा होता है, उसकी मकदार सही नहीं होती है, या उसके अंदर जो है वो साफ सुथरा ब्लड नहीं पहुंच रहा होता, तो पूरी बॉडी का निज़ाम फिर मुतासर हो जाता है, ठीक है। और रूहानी दुनिया में भी देखा जाए तो रूहानी दुनिया में भी कल्ब जो है ना वो कंट्रोल करता है सारे आमाल को, ठीक है ना, रूहानी दुनिया में कल्ब जो है ना वो हाथ पैर की के मसल्स को कंट्रोल नहीं करता कि जी ये इसके जो मसल्स और टिश्यूज जो है वो बड़े सेहतमंद हो जाएंगे, बल्कि वो उनके आमाल को, उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, रूहानी कल्ब। तो अगर कल्ब जो है वो मजबूत होगा, सेहतमंद होगा, तो इंसान जो है वो अच्छे अमाल कर रहा होगा, और अगर कल्ब कमजोर होगा यानी बीमार होगा, ठीक है, तो इंसान के जो अमाल है ना वो खराब होंगे, ठीक है। कल्ब बादशाह की मानिंद है, बादशाह अगर नेक होगा तो रियाया जो है ना तो मुल्क के अंदर जो एक्शंस हो रहे होंगे वो नेक एक्शंस हो रहे होंगे, अगर बादशाह जो है वो नेक नहीं होगा बल्कि गुनाहगार होगा तो मुल्क के अंदर जो मामलात हो रहे होंगे वो भी गुनाहों वाले मामलात हो रहे होंगे। तो फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है कि आज़ा की दुरुस्ती और अताअत खुदाबंदी बजा लाना दिल के दुरुस्त होने पर मौकूफ है, क्योंकि दिल जिस्म का बादशाह है और रईयत की इस्लाह मौकूफ होती है बादशाह के नेक होने पर। बस आज़ान नेक काम उस वक्त ही करेंगे जब दिल नेक होगा, लिहाजा दिल की इस्लाह की कोशिश करना वाजिब है। ठीक है, तो दिल नेक होगा तो सही है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने दिल को तो इख्तियार नहीं दिया, दिल तो बे इख्तियार होता है बल्कि, ठीक है ना, दिल तो बे इख्तियार है। कहते हैं ना कि जी मेरा दिल मेरे मेरे कब्जे में नहीं है, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। ठीक है, और हदीसे मुबारका के अंदर भी ये बात साबित है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये बात बताई कि दिल के ऊपर तो मेरा काबू नहीं है, ए अल्लाह मेरा काबू मेरे दिल के ऊपर नहीं है। ठीक है, और हम सुनते भी रहते हैं अक्सर ये कि दिल तो अल्लाह के कब्जे में है, नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये भी फरमाया कि दिल तो अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे उसे पलट दे, या मुकल्लिबल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, दुआ भी मांगी। ठीक है ना, कि दिल तो आपके कब्जे में है, मेरे कब्जे में तो नहीं है, आप इसको जिधर चाहे फेर दें तो आप इसको नेकी के ऊपर फेर दें। ठीक है, तो फिर जब दिल के पास इख्तियार ही नहीं, तो फिर दिल कैसे कंट्रोल करता है सारे कल्ब के अमाल, सारे जिस्म के अमाल को दिल कैसे कंट्रोल करता है जबकि दिल के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं, दिल तो बे इख्तियार है। ठीक है ना, यानी उसके पास तो चॉइस नहीं है कि वो नेक काम करे कि वो बुरा काम करे। तो इसका क्या जवाब है, कोई आप में से अगर बताना चाहे, पता तो है माशाल्लाह काफी लोगों को एक बात। जी, जब दिल बे इख्तियार है तो फिर ये वाला जुमला जो है ये तो फिर उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, उससे इख्तिलाफ कर रहा है ये वाला जुमला। ये जुमला कहता है कि भाई दिल बादशाह है और बादशाह जो है वो सारी चीजें कंट्रोल करता है, तो इसका क्या जवाब है फिर, यानी आप कैसे इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करेंगे या इस तजाद को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कैफियात गैर इख्तियारी हैं, अमाल करना इख्तियार में है। कैफियात गैर इख्तियारी हैं और अमाल करना इख्तियार में। अच्छा, अमाल करना इख्तियार में है, कैफियात गैर इख्तियारी हैं, ये बात पूरी नहीं हुई है। अमाल करना इख्तियार में, जब कैफियात नहीं, अमाल करना इख्तियार में, यानी दिल के इख्तियार में अमाल करना। कोई और बताया अगर इसके जवाब ज्यादा क्लियरली, अगर कोई और बता सके। प्यार अमल करने पर इख्तियार जो है वो दिल को है ही नहीं, किसी को भी इसका जवाब नहीं पता। इख्तियार है क्यों, इख्तियार है कि हम कौन सा रास्ता चुने, अच्छाई का या बुराई का, ये इख्तियार दिल के पास तो नहीं है। ये इख्तियार किसके पास है कि हम चुने कि कौन सा रास्ता। ये इख्तियार जो है ना वो दिल के पास नहीं है, ये इख्तियार जो है वो हमारी रूह के अंदर एक और मकाम है, उसके पास ये इख्तियार है कि हम नेकी का रास्ता इख्तियार करें कि हम बुराई का रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, ये जो मकाम है उसको दिल नहीं कहते, उसको कहते हैं अकल। कल्ब कहते हैं, नहीं उसको कहते हैं अकल, ठीक है ना। अकल के पास ये इख्तियार है कि वो नेकी का रास्ता पसंद करे, इख्तियार करे, या वो बुराई का रास्ता इख्तियार करे, ठीक है। अकल के पास ये इख्तियार है, दिल के पास ये इख्तियार नहीं है। बल्कि दिल का ये काम ही नहीं है, दिल का ये काम ही नहीं है। दिल का काम सिर्फ और सिर्फ कैफियात है। दिल का काम क्या है? कैफियात, बस। इख्तियार करना दिल का काम ही नहीं है, इख्तियार करना तो है ही अकल का काम, ठीक है। तो दिल का काम फिर क्या है? दिल का काम जो है ना, वो अकल को, दिल के अंदर जो कैफियात होती हैं, वो कैफियात अकल के ऊपर अपना असर डालती हैं। दिल के अंदर जो कैफियात होती हैं ना, वो अकल के ऊपर अपना असर डालती हैं, ठीक है ना। बस ये है, दिल का फंक्शन ये है। दिल खुद नहीं असर डाल रहा होता, बल्कि दिल के अंदर जैसी कैफियात होती है, वो कैफियात उसके ऊपर असर डाल रही होती है, अकल के ऊपर, ठीक है। अगर दिल के अंदर कैफियात जो है वो अच्छी होंगी, ठीक है, तो वो अकल के ऊपर अच्छा असर डाल रही होंगी। और अगर दिल के अंदर कैफियात जो है ना वो अच्छी नहीं होंगी, तो अकल के ऊपर जो है वो अच्छा असर नहीं आ रहा होगा। दिल के अंदर बुरी कैफियात होती नहीं है एक्चुअली, ठीक है। दिल के ऊपर बुरी कैफियात होती नहीं है। दिल जो है ना, ये बस क्या कहते हैं, या तो इसमें अच्छी कैफियात ज्यादा होंगी, या इसके अंदर अच्छी कैफियात कम होंगी। दूसरी एक चीज है हमारे अंदर, जिसको नफ्स कहते हैं, नफ्स, ठीक है। ये नफ्स जो है ना, इसके अंदर बुरी कैफियात होती है। नफ्स के अंदर बुरी कैफियात होती है, दिल के अंदर अच्छी कैफियात होती है। लेकिन दिल अगर ज्यादा सेहतमंद होगा, मजबूत होगा, तो उसकी कैफियत जो है ना, यानी अच्छी कैफियत, दिल के अंदर अच्छी कैफियत होती है ना, अगर दिल मजबूत होगा तो अच्छी कैफियत जो है वो अकल के ऊपर अपना असर डालेंगी और अकल अच्छे फैसले करेगी। और अगर दिल कमजोर होगा तो दिल की जो कैफियत है, यानी अच्छी कैफियत, वो अकल के ऊपर असर नहीं डाल सकेंगी। नफ्स अगर मजबूत होगा, नफ्स के अंदर होती हैं बुरी कैफियत, ठीक है, बुरे जज्बात, तो अगर नफ्स मजबूत होगा तो वो अपना असर जो है वो अकल के ऊपर डालेगा और अकल गलत फैसले करेगी, बुरे फैसले करेगी। और अगर नफ्स कमजोर होगा तो नफ्स अपना असर अकल के ऊपर नहीं डाल सकेगा, ठीक है। तो इट इज लाइक के फैसला तो अकल ने करना है, फैसला तो अकल ने करना है, लेकिन नफ्स और दिल जो है ना, ये दोनों जो है वो उसको लॉबी कर रहे होते हैं, है ना। लॉबी का लफ्ज तो अंग्रेजी में का लफ्ज है, लेकिन उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होता है। ये लॉबी कर रहे होते हैं उसको, ये उसके ऊपर अपना असर डाल रहे होते हैं। जो लॉबी मजबूत होती है उसका असर चल जाता है, और जो लॉबी कमजोर होती है उसका असर नहीं चलता, ठीक है ना। जैसे हमने बहुत सालों पहले जो है वो एक बयान किया था कि अमरीका की मिसाल दी थी कि अमरीका के अंदर जो प्रेजिडेंट होता है ना, वो तो सबसे पावरफुल इंसान कहलाता है, लेकिन वो प्रेजिडेंट जो है ना, वो इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं कर सकता, वो आजादी से फैसले नहीं कर सकता, ठीक है ना। बल्कि अमेरिका के अंदर लॉबियां होती हैं, वो लॉबी प्रेसिडेंट को फोर्स करती हैं कि वो कोई फैसला करे, ठीक है ना। जैसे ज्यूइश लॉबी है ना, बड़ा मशहूर है आजकल, सबसे ज्यादा जो है वो यही पूरी दुनिया के अंदर इसका शोर मचा हुआ है कि ज्यूइश लॉबी जो है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को फोर्स करती है कि वो इसराइल के हक में फैसले करे और मुसलमानों के खिलाफ फैसले करे, ठीक है ना। अगर आज अमेरिका के अंदर मुस्लिम लॉबी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, मुस्लिम लॉबी, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को फोर्स करके जो है ना वो अपने फैसले मनवा रही होगी, लेकिन वहां पे मुस्लिम लॉबी स्ट्रांग है ही नहीं, और हो भी नहीं सकती जाहिर है, ठीक है ना। तो ज्यूइश लॉबी के हक में फैसले होते हैं, इसराइल के हक में फैसले होते हैं, ठीक है। तो फैसला तो प्रेसिडेंट ने करना होता है, दस्तखत तो प्रेसिडेंट ने करने होते हैं किसी फैसले के ऊपर, लेकिन वो खुद से दस्तखत कर नहीं सकता, वो लॉबी के असर में होता है। यही मामला जो है ना, वो हमारे जिस्म, हमारे वजूद का भी है कि फैसला तो अकल ने करना होता है, लेकिन अकल जो है ना, ये इंडिपेंडेंटली आजादाना फैसला कर नहीं सकती, ठीक है ना। नफ्स अगर पावरफुल होगा तो वो नफ्स के तहत फैसला करेगी, और अगर दिल पावरफुल होगा तो वो दिल के जेरे असर फैसला करेगी, ठीक है। बाकी शेर व शायरी जो है ना, शेर व शायरी में पूरी बात होती नहीं है, शेर व शायरी की भी तफसीर की जरूरत पड़ती है, तशरीह की जरूरत पड़ती है, तब बात समझ में आती है, ठीक है। उसी तरीके से बड़ों का जो कलाम होता है ना, जैसे नबी अलैहिस्सलाम इंसानों में सबसे बड़े हैं, तो बड़ों का जो कलाम होता है उस कलाम की तफसीर की जरूरत पड़ती है, तब बात समझ में आती है। और हमारे नज़दीक तो बल्कि हमारे मुकाबले में तो बल्कि हज़रत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत बड़े हैं, तो उनका भी जो कलाम है ना उसकी भी तफसीर की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के बात समझ में आती है। ठीक है, नफ्स के भी टाइप्स होते हैं, नहीं नफ्स के टाइप्स नहीं होते, नफ्स की हालतें होती हैं। एक होती है बड़ी स्ट्रोंग हालत, एक होती है दरमियानी दर्जे की हालत, और एक होती है कमजोर हालत। ठीक है, नफ्स की जो सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे मजबूत हालत होती है ना उसको कहते हैं नफ्स अम्मारा, नफ्स अम्मारा। ये सबसे मजबूत हालत होती है नफ्स की, जब नफ्स सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और इसका हुक्म यानी इतना पावरफुल होता है कि इसका हुक्म अकल के ऊपर चल रहा होता है, इसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। इन नफ्सा ला अम्मारा तुम बिसू इल्ला मा रहिम रब्बी। ठीक है ना, नबी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, सूरह यूसुफ की आयत है कि ये नफ्स अम्मारा जो होता है ना ये तो बुराई ही की तरफ बुलाता है। ठीक है ना, इल्ला मा रहिम रब्बी भी फरमा दिया कि एक्सेप्शन भी होती हैं कि किसी का नफ्स बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन एज एन एक्सेप्शन अल्लाह ताला ने किसी पर रहम फरमा दिया और उसने नफ्स के प्रेशर के बावजूद सही फैसला कर लिया, लेकिन ये एक्सेप्शन होती है, रूल नहीं होता ये। ठीक है ना, फिर उसके बाद नफ्स जो है ना अगर आप उसको कमजोर करें यानी शेख की बात माने, ठीक है ना, अल्लाह का हुक्म माने और शेख का हुक्म माने, तो इससे क्या होता है, नफ्स कमजोर होता है, नफ्स कमजोर पड़ता है। अब वो अम्मारा नहीं रहता बल्कि वो कमजोर होकर के नफ्स लवामा बन जाता है। ठीक है ना, ला अक्सुमु बियौमिल क़ियामा वला अक्सुमु बिन नफ्स लवामा। सूरह कयामत के अंदर अल्लाह ताला कसम खाते हैं लफ्ज़ नफ्स लवामा की। ठीक है ना, नफ्स लवामा जो है ना ये कमजोर हो जाता है। अब ये जो है ना ये बुराई फोर्स तो कर रहा होता है अकल के ऊपर, अकल को फोर्स तो कर रहा होता है कि वो बुरा फैसला करे, लेकिन साथ साथ जो है ना इसको यानी इतना कमजोर हो चुका होता है कि दिल का भी असर इसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है और इसको जो है ना वो बुराई के ऊपर मलामत भी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, यानी इसको जो है ना वो यानी ये फुल फोर्स के साथ बुराई की तरफ नहीं बुला रहा होता बल्कि थोड़ा सा पसोपेश के साथ बुराई की तरफ बुला रहा होता है अकल को। ठीक है, ये होता है नफ्स लवामा वाली हालत। इसको आप मजीद कमजोर जब करते हैं ना अल्लाह का हुक्म मान करके, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करके और शेख का हुक्म मान करके, ठीक है ना, ये तीनों अल्लाह ताला ने हम हमारे ऊपर बनाए हैं। ठीक है ना, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अतीउल्लाह का मतलब अल्लाह का हुक्म, कुरान मजीद के सिलसिले में पता चलता है। अतीउर्रसूल नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना जो कि हदीस मुबारक से हमें पता चलता है। वह उलिल अम्र मिनकुम तुम्हारे दरमियान जो उलुल अम्र है, ठीक है ना, एक इंसान की जाती जिंदगी में उलुल अम्र जो है वो उसका शेफ होता है। ठीक है, इज्तिमाई जिंदगी में उलुल अम्र को हाकिम कहते हैं, अमीर कहते हैं इज्तिमाई जिंदगी में, लेकिन इनफरादी जिंदगी में उलुल अम्र कौन होता है, शेख। ठीक है ना, एक औरत की जो इनफरादी जिंदगी होती है उसके अंदर उलुल अम्र उसका शेखुल बैत होता है यानी शौहर। ठीक है ना, और अगर शौहर जो है वो नहीं सही काम करता हो तो फिर जो है वो उसका जो शेखुल बैत होता है वो भी इसका उलुल अम्र होता है। तो इन तीनों का जब हुक्म मानते हैं ना तो अमर तो नफ्स जो है ना वो और कमजोर हो जाता है, और कमजोर हो जाता है, हत्ता के बिल्कुल जब नफ्स कमजोर हो जाता है ना तो उस हालत में नफ्स को क्या कहा जाता है, नफ्स तो एक ही होता है, कोई नफ्स बदल नहीं जाता, नफ्स वही है जो आपके अंदर है, लेकिन बहुत कमजोर होने के बाद ये नफ्स जो है ना वो कहलाता है नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना। ठीक है ना, ये नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है, ये चुप करके बैठा होता है, ये अपना असर नहीं डाल रहा होता अकल के ऊपर क्योंकि इतना कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि ये अब अपने ये अकल पे असर डाल ही नहीं सकता, इतना कमजोर हो चुका है। इसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। ठीक है, ये इत्मीनान से बैठा होता है कोने में छुप करके, दुबक करके जिसको कहते हैं, दुबक के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये दुबक के बैठा हुआ होता है। अच्छा, ये तो नफ्स को कमजोर करने का तरीका हो गया, कल्ब को मजबूत करने का तरीका क्या होता है, कल्ब को मजबूत करने का तरीका ये होता है, दो तरीके होते हैं और ये साथ साथ चल रहे होते हैं। एक तरीका होता है कि आप कल्ब को उसकी गिजा दें, कल्ब को उसकी गिजा दें, कल्ब की गिजा जो है वो रूहानी दुनिया की चीजें, قرآن یہ قلب کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے وہ لسانی طور پر کیا جائے چاہے وہ قلبی طور پر کیا جائے، یہ اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے نا یہ قلب کو کمزور کرتا ہے. نیکی کے کام کرنا اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق، جیسے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھ رہے ہیں، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ نیکی کا کام کرنا، اس سے قلب کمزور قلب جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا طریقہ قلب کو مضبوط کرنے کا ریلیٹیولی اسپیکنگ، ٹھیک ہے نا، ان ریلیشن ٹو دا نفس. بھائی یہ نفس اور قلب کے درمیان جنگ چلتی رہتی ہے نا، یہ کوشش کرتا ہے کہ میں عقل پہ اثر ڈالوں، نفس کوشش کرتا ہے کہ میں اثر ڈالوں. اب اگر نفس جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے تو بالمقابلہ نفس کے قلب مضبوط ہو رہا ہے نا. جب دو پہلوانوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور ایک پہلوان جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، تو ظاہر سی بات ہے دوسرا پہلوان اس کے مقابلے میں تو زیادہ مضبوط ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو قلب جو ہے وہ خود کھانے کھا کھا کر کے بھی مضبوط ہوتا ہے اور نفس کے مقابلے میں بھی وہ مضبوط بن رہا ہوتا ہے جب نفس کمزور پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب قلب جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، تو اب عقل کے اوپر قلب کے کا اثر چل رہا ہوتا ہے، قلب کا اثر چل رہا ہوتا ہے، اور عقل جو ہے نا وہ عقل کنٹرول کر رہی ہوتی ہے ہاتھ کو، ہاتھ کے عمل کو عقل کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، ہاتھ پیر کے عمل کو عقل کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، زبان کے عمل کو عقل کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، لیکن بالواسطہ قلب کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، عقل کے واسطے سے قلب کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے تفسیر اس حدیث مبارکہ کی، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال ہے؟ تو حدیث مبارکہ غلط نہیں کہہ رہی، بالکل صحیح کہہ رہی ہے، لیکن تفسیر چاہیے ہوتی ہے، ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے، ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے. تو قلب ڈائریکٹلی ہاتھ کے عمل کو کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ قلب عقل کے واسطے سے ہاتھ کے عمل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، آنکھ کے عمل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آنکھ جو ہے وہ جائز چیز کی طرف دیکھے گی، ناجائز چیز سامنے آئے گی، فوراً جھک جائے گی یا فوراً بند ہو جائے گی. کب؟ جب قلب جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا، وہ عقل کو حکم دے رہا ہوگا اور عقل جو ہے نا وہ آنکھ کو حکم دے رہی ہوگی تم نے ناجائز چیز کی طرف نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے. اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا المؤمنون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کو جھکا لو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دو، حکم دے دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو آپ جھکا لیں، یعنی ناجائز کو مت دیکھیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تو دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، اللہ آپ میرے دل کو مضبوط بنا دیے، میں تو کوشش کر رہی ہوں لیکن اصل میں تو آپ ہی نے اس کو مضبوط بنانا ہے. تو اس وجہ سے دعا تو ہر چیز کے اندر کرنی ہی ہوتی ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کی درستی اور اطاعت خداوندی بجا لانا دل کے درست ہونے پر موقوف ہے، کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے اور رعیت کی اصلاح موقوف ہوتی ہے بادشاہ کے نیک ہونے پر. پس اعضاء نیکام اس وقت ہی کریں گے جب دل نیک ہوگا، لہذا دل کی اصلاح کی کوشش کرنا واجب ہے. گویا کہ آپ اگر آپ کہیں کہ بھی نہیں تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ جو لکھا ہے بس ہم تو اسی کو مانیں گے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا وہ تو دل ہی ہوتے ہیں، بے شک ہم مان لیں پریزیڈنٹ صاحب دل ہوتے ہیں، لیکن دنیا آپ نے دیکھا ہے ملکوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے بیوروکریسی سمجھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، افسر شاہی، ٹھیک ہے. تو بیچارے بادشاہ صاحب سلامت تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا حکم تو وہ دے دیتے ہیں، لیکن حکم کو امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ افسر شاہی امپلیمنٹ کرتی ہے، بیوروکریسی امپلیمنٹ کرتی ہے. تو اگر آپ قلب کو بادشاہ ماننے پر ہی تلے ہوئے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو عقل ہے نا وہ جو ہے وہ افسر شاہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں یعنی فیصلہ تو اس نے کرنا ہے، اوپر سے بادشاہ صاحب بے شک حکم دیتے رہے لیکن فیصلہ تو عقل نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، افسر شاہی نے کرنا، تو وہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہونا تو وہی ہے. بہرحال کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. دیکھیے، شریعت نے ایسی حالت میں جبکہ انسان کو کھانے کی شدید خواہش ہو اور اس حالت میں نماز پڑھنے سے طبیعت پریشان ہو تو یہ حکم دیا ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، بشرطے کہ نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ عبادت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور بندگی کا اظہار ہے، इस तरह के जाहिर व बातिन उसकी इबादत में मशगूल हों और गैर अल्लाह की तरफ हत्तुल इम्कान तवज्जो ना रहे। ठीक है, यानी नमाज उस हालत में पढ़नी चाहिए कि जिस वक्त जो है ना वो इधर उधर तवज्जो बटी हुई ना हो, और जब भूख लगी होगी तो अगरचे जाहिर बदन नमाज में मशगूल होगा लेकिन दिल परेशान होगा। दिल परेशान होगा के क्या मतलब कि दिल यकसू नहीं होगा, ठीक है ना। मुंतशिर होना ये असल में परेशानी है, मुंतशिर होना ये परेशानी है, ठीक है। और इत्मीनान क्या है? इत्मीनान का मतलब होता है यकसू होना। जब कोई चीज यकसू होती है ना तो वो मुतमईन होती है, और जब कोई चीज यकसू नहीं होती तो वो परेशान होती है, ठीक है। तो दिल परेशान होगा और चाहेगा कि जल्दी से नमाज से फारिग हो जाए ताकि जल्द खाना मिल जाए। बस अल्लाह ताला के सामने जिस तरह हाजिरी चाहिए थी इसमें बहुत बड़ा खलल वाकई होगा, जिस तरह की हाजिरी चाहिए थी उसमें बहुत बड़ा खलल वाकई होगा। लिहाजा ऐसी हालत में नमाज को मकरूह कहा गया है, जिससे ये मालूम हुआ कि नजर खुदाबंदी का महल कल्ब है। शरीयत मुकद्दसा ने उसकी इस्लाह का बहुत बड़ा इंतजाम किया है। बुजुर्गान दीन ने इस्लाह कल्ब के लिए बरसों मुजाहदे और रियाजतें की हैं कि कल्ब जो है ना वो मजबूत हो जाए, सेहतमंद हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए रियाजतें यानी बहुत मुजाहदे और मुशक्कतें और तकलीफें उठाई हैं ताकि जो है ना वो कल्ब मजबूत हो जाए, ठीक है। तो ये जो नमाज की हजरत ने मिसाल दी है ना, तो इसमें एक बात बस याद रखें कि इसका ताल्लुक जो है ना वो उससे नहीं है कि आप जब तक यकसुई ना हो तो उस वक्त तक मैं फर्ज नमाज अदा नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि जी जोहर का नमाज खत्म हो गया और चूंकि आपको यकसुई नसीब नहीं हो रही तो इस वजह से आपने जोहर की नमाज कजा कर दी, नहीं, ये इसका हरगिज मतलब नहीं है, ठीक है। बल्कि ये जो कैफियत है ना ये मकसद इसको बयान करने के लिए है कि
ज्यादातर
अपने अंदर से इंतजार को खत्म करें। ये मतलब नहीं है कि नमाजें पढ़ना छोड़ दें या फर्ज नमाज को कजा कर दें, हत्ता कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि नफिलें पढ़ना छोड़ दें, ये भी इसका मतलब नहीं है कि जब तक दिल का यकसू नहीं होगा उस वक्त तक आप नफिलें नहीं पढ़ेंगे, ये भी इसका मतलब नहीं है, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि जी मैं तो इस वजह से नफिलें नहीं पढ़ती, चलो फर्ज पढ़ लेती हूँ, ठीक है ना, लेकिन नफिलें नहीं पढ़ती। क्यों नहीं नफिलें पढ़ती भाई? इसलिए कि मेरा दिल जो है ना वो मुंतशिर है, इस वजह से मैं नफिलें नहीं पढ़ती। नहीं, बिल्कुल भी ये मकसूद नहीं है इस पैराग्राफ का, बल्कि इस पैराग्राफ का मकसूद ये है कि कल्ब को इंतशार से बचाना और यकसू करना कितना अहम है, इसकी अहमियत समझाना मकसूद है, ठीक है ना। अब कोई शख्स जो है वो इस तशरीह के बगैर इस पैराग्राफ को पढ़ेगा तो या तो उसके दिल में ये बात आएगी चलो मैं नमाज ही नहीं पढ़ता जब तक मेरा कल्ब जो है वो यकसू नहीं होगा, मैं फर्ज भी नहीं पढ़ूंगा, या इससे कम दर्जा ये है कि वो क्या कहते हैं चलो फर्ज तो पढ़ लूंगा लेकिन नफले नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि फर्ज नमाज के अलावा जितनी नमाजें होती हैं वो सारी नफिल नमाजें होती हैं, जिनको हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं ना और सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं, ये सब नफिल नफिल नमाजें, ये फर्ज कोई थोड़ी है। सुन्नत मुअक्कदा भी फर्ज नहीं है, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी फर्ज नहीं है, ठीक है ना। ये सब नफिल नमाजें, तो फिर हम इनको सुन्नत मौकदा क्यों कहते हैं? सुन्नत मौकदा सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो नफिल नमाजें हैं कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीद के साथ पढ़ा, ठीक है ना, खुद यानी हमेशा पढ़ा, उनको सुन्नत मौकदा कह देते हैं, हालांकि वो नफिल नमाजें होती हैं, ठीक है। और जो सुन्नत गैर मौकदा है वो नफिल नमाजें हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम कभी पढ़ते थे और कभी नहीं पढ़ते थे, वो सुन्नत गैर मौकदा है, तो वो असल में नफिल नमाज है। तो कोई शख्स जो है ना वो ये कहे कि अच्छा मैं फर्ज तो पढ़ लूंगा लेकिन नफिल नहीं पढ़ूंगा जब तक मेरा मुझे यकसुई नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब वो ना सुन्नत मौकदा पढ़ेगा और ना वो सुन्नत गैर मौकदा पढ़ेगा, वो मारे बांधे किसी तरीके से बस ज्यादा से ज्यादा फर्ज नमाज पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ का हरगिज हरगिज मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे हदीस में है कि अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन मरफूअन काला रकअतान मुक्सदतान खैरु मिन कयाम लैलतिन वल कल्बि साहिन, ठीक है, कि दो रकअतें नमाज पढ़ना मियाना रवि के साथ इक्तेसाद के साथ। इक्तेसाद कहते हैं कि यानी ना आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, इस एक्सट्रीम पर जाए ना दूसरी एक्सट्रीम पर जाए। क्या उसके लिए उर्दू के अंदर क्या टर्म होती है, क्या होता है वो, वाओ के साथ जो बोलते हैं, म्यान अरबी तो लिखा हुआ है ना, थोड़ी पूछ रहा हूँ। एक्सट्रीम्स के लिए क्या 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 उर्दू का मुहावरा होता है, इंतहा नहीं, तस्रीफ क्या, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जुबान के ऊपर एक लफ्ज आकर के अटक जाता है। हाँ, इफरात और तफरीत, ना इफरात हो ना तफरीत हो, जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है ना। तो उसको म्यान अरबी कहते हैं, उसको दरमियान कहते हैं, उसी को इतदाल भी कहते हैं, उसी को इकोनॉमी भी कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर उसके लिए इकोनॉमी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल, ठीक है, जो कि बिल्कुल दरमियान का रास्ता हो, ना आप उसमें इफरात करें ना उसके अंदर आप तफरीत करें, ना ज्यादा करें ना उसके अंदर इतदाल से कम करें। तो म्यान अरबी के साथ 2 रकत नमाज पढ़ना बेहतर है रात भर ऐसी नमाज में नमाज पढ़ने से कि दिल गाफिल हो, ठीक है, यानी तवज्जो के साथ। यहाँ म्यान अरबी का मतलब यह है कि दिल की तवज्जो जो है ना वो यकसू हो, तो 2 ही रकत नमाज पढ़ लेना, क्योंकि हमारे दीन के अंदर उसूल क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो अक्सरु आमाला नहीं चाहते, अल्लाह ताला जो है वो अहसनु आमाला चाहते हैं, ठीक है, अच्छा अमल करो, बेशक जो है वो बहुत यानी उसकी मिकदार बहुत ज्यादा ना हो, मिकदार कम हो लेकिन अच्छा हो। जैसे कि हम भी, हमारी भी यही फितरत है कि हम जो है ना वो जब कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, जब कोई चीज अपने लिए पसंद करते हैं ना, तो हमें क्वालिटी चाहिए होती है, क्वांटिटी इतनी अहम नहीं होती हमारे लिए। ये ना हो कि क्वांटिटी तो आपने बहुत सारी खरीद लेकिन क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज थी, क्वालिटी खराब थी। हम भी पसंद करते हैं क्वालिटी को, बेशक क्वांटिटी कम हो, वही मामला जो है वो अल्लाह ताला का भी है। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि उसके फराइज वाजिबात और सुनन को हुजूरिये कल्ब के साथ अदा करें, यानी कल्ब हाजिर हो उस नमाज के अंदर, अगरचे कयाम व कराआत वगैरह तवील ना हो, ऐसी 2 रकतें रात भर गफलत कल्ब के साथ नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर और मकबूल हैं, ठीक है, साफ जाहिर है। नबी अलैहिस्सलाम कसरत भी करते थे, लंबी नमाजें भी पढ़ते थे, हत्ता कि 1 रकत में जो है वो पूरी सूरह बकरा पढ़ ली, 1 रकत के अंदर पूरी सूरह आले इमरान पढ़ ली। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो इतनी लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते थे, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की जो पूरी की पूरी नमाज होती थी ना वो यकसुई कल्ब के साथ होती थी, ठीक है ना, उसके अंदर गाफिल दिल, बोझ यानी बोझ वाला दिल ऐसा होता ही नहीं था, पूरी नमाज ही जो है वो अल्लाह ताला के साथ जो है वो हुजूरी के साथ होती थी, तो इस वजह से लंबी नमाजें पढ़ते थे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम नमाजें बेशक पढ़ें, या किसी के पास तहज्जुद का मौका है वो तहज्जुद पढ़े, वो लंबी लंबी नफलें भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो बोझ बनना शुरू हो जाए ना, तो फिर उस वक्त जो है वो नमाज को जो है वो मुख्तसर करके फिर दूसरी इबादत के अंदर लग जाए, ठीक है ना, कुरान मजीद पढ़ने में लगने, जैसे होता है कुछ वो इबादत वाली रातें होती हैं, 15 शाबान की रात है, या जो है वो कोई और शब कदर की रातें हैं, ठीक है ना, या जो है वो जिलहज्जा की 10 रातें हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इबादत करने का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में शौक है, खुसूसन ख्वातीन को शौक होता है, तो उसमें जो है ना ये नहीं है कि बस मारे बांधे की नमाजें ही पढ़ते रहे खाली, नहीं, बल्कि नमाज पढ़ें जब तक हुजूर कल्ब के साथ नमाज हो रही है, और अगर फिर तकलीफ होनी शुरू हो गई उस वक्त छोड़ करके जो है ना वो किसी और इबादत के काम के अंदर लग जाए, ठीक है, अगर दूसरी जिम्मेदारियां नहीं है तो सिर्फ इबादत ही करनी है, तो फिर एक इबादत की सिर्फ एक शक्ल तो नहीं है, कुरान मजीद की तिलावत भी है और तस्बीह पढ़ना भी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगना है, दुआ मांगने के अंदर लग जाए, ठीक है, दुआ मांगना जो है ना ये ऐसा हुजूरी कल्ब वाला अमल है कि इससे बढ़कर के दूसरा कोई अमल नहीं हो सकता। अद दुआ मुखुल इबादत, दुआ तो इबादत का मगज है, ठीक है, तो सबसे बेहतरीन अमल ये है कि इंसान अल्लाह ताला से जो है ना वो राज और न्याज और मांगना और गड़गड़ाना और रोना धोना ये शुरू हो जाए। बहरहाल इस हदीस से एहतमाम कल्ब की किस कदर ताकीद मालूम होती है, वजह यह है कि फिल हकीकत फेल की कैफियत देखी जाती है कि कैसा काम किया, और मकदार मतलूब नहीं है कि कितना काम किया। काम बाकायदा और उमदा हो तो वो अल्लाह ताला के यहाँ महबूब और मकबूल है, अगरचे थोड़ा ही हो। और अगर बहुत ज्यादा काम हो लेकिन बेकायदा और बेजाब्ता और गफलत से हो तो वो नापसंद है। ठीक है, हत्ता कि एक हदीस तो हमने मशायख से सुनी कि ला सलाता इल्ला बिहुजूर अल-क़ल्ब, कि हुजूरी कल्ब के साथ यानी कल्ब की तवज्जो के साथ तो नमाज ही नहीं होती। क्या मतलब? नमाज अदा हो जाती है लेकिन नमाज के फायदे हासिल नहीं होते। ला सलाता इल्ला बिहुजूर अल-क़ल्ब। तो ये जो था नमाज के अंदर यकसुई और हुजूरी बयान करके हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बताना चाह रहे थे कि दिल का यकसू होना जो है वो कितना ज्यादा अहम है। किसी को कोई सवाल हो इस पूरे टॉपिक के सिलसिले में से मुतालिक? क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है तो अब अगली क्लास भी शुरू करनी है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर हम थोड़ी ब्रेक लेकर के फिर अगली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, मिसाली बीवी क्लास के बाद शुरू करेंगे।